भागवतम सार पर चर्चा कर रहे हैं। आज सातवें अध्याय पर चर्चा होगी। छह अध्याय चर्चा हम लोग कर चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये अध्याय हैं। इन अध्यायों में भक्ति के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रकट किया गया है और इसलिए इन पर हम लोग बड़े संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं। तो आज सातवां अध्याय प्रारंभ करने से पहले सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को कहेंगे और फिर यह अध्याय प्रारंभ करेंगे। सर्वशास्त्राधिपीयूष सर्ववेदैकसत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिधान्तोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानन्द पाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु ते। एक बंधु मत संगी मत गुरु मन महाधन मन निस्तारक मत भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधु तदाई अति नीचोच तकर हान मुंच कदाचिन् माम प्रेम्णा हृत्कण्ठयो सुरा। आठवां अध्याय क्या खुले भागवतम के ये सातवां अध्याय है। अध्याय का शीर्षक है द्रोण के पुत्र को दंड। अभी तक हम लोग छह अध्यायों में सुन चुके हैं कि कैसे प्रश्न हुआ चौथे अध्याय में, श्रीमद् भागवत का अब इतिहास कैसे आया इसको वर्णन हो रहा था। पिछले दो अध्यायों में हम लोगों ने देखा कि कैसे व्यासदेव सारी रचना करके भी संतुष्ट नहीं थे और इसीलिए शास्त्रों की रचना के बाद भी उनका हृदय असंतुष्टि से भरा था। नारद मुनि ने ज्ञान दिया, अपने जीवन की कथा सुनाई और फिर ये कहकर वो चले गए। और अब सातवें अध्याय में शौनक मुनि प्रश्न करते हैं, जैसे छठे अध्याय में वेद व्यास ने प्रश्न किया था, व्यासदेव ने प्रश्न किया था कि जब वो चले गए वो सब साधु आपके घर से, तब आपने क्या किया। और ऐसा ही प्रश्न शौनक मुनि इस अध्याय के प्रारंभ में करते हैं। वो कहते हैं कि जब नारद मुनि चले गए तब व्यासदेव ने क्या किया। तो व्यासदेव चाहते थे जीवन को सुनना नारद मुनि के, ताकि वो नारद मुनि के जीवन को सुनकर उसको सिद्धांतों को अपनाकर अपना जीवन पूर्ण कर सकें। और शौनक आदि ऋषि सुनना चाहते हैं व्यासदेव ने क्या किया, ताकि हम भी उस चीज को करके अपने जीवन को परिपूर्ण कर सकें। ये परंपरा है, इसे परंपरा कहते हैं कि जब भगवान ज्ञान देते हैं तो भगवान का ज्ञान किसी शुद्ध भक्त को भगवान देते हैं, फिर वो शुद्ध भक्तों की एक परंपरा चलती है जहां पर इस ज्ञान को एक के बाद एक, एक के बाद एक उसको दिया जाता है। तो हमें अपने गुरु से सीखना है, उन वो जो हैं वो अपने गुरु से सीखते हैं, ऐसे गुरु शिष्य परंपरा होती है। तो जो अच्छा शिष्य है वही अच्छा गुरु बन सकता है, जिसने अच्छी तरह से श्रवण किया है वही अच्छी तरह से समझा सकता है, जिसने श्रवण नहीं किया वो समझा नहीं सकता। इसे गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं। शिष्य गुरु से सुनता है, उसको समझता है और फिर जाकर अपनी क्षमता के अनुसार अन्यों को सिखलाता है, तो ये गुरु परंपरा कहलाई जाती है। तो ऐसे प्रश्न किया शौनक आदि ऋषियों ने। तो ये जो पूरा अध्याय है, कई श्लोक हैं इसमें, तो ये चार भागों में विभाजित हैं। पहले से सातवां श्लोक ये एक विभाग है जहां प्रश्न पूछे गए, शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न पूछा और व्यास देव ने क्या ध्यान किया इसका वर्णन किया गया है। और फिर आठवें श्लोक से लेकर ग्यारहवें श्लोक तक वर्णन है कि किस प्रकार ये भागवतम जो व्यास देव ने अपने ध्यान से भक्तों के लिए प्रकट की, उन्होंने कैसे सुखदेव गोस्वामी को सिखलाई। तो ये श्लोक नंबर 11 तक है। फिर 12 से अब कथा शुरू हो जाती है, कृष्ण की कथा। तो परीक्षित महाराज के जन्म को कहना है, लेकिन सीधे जन्म को नहीं कहते हैं, थोड़ी सी भूमिका दे देते हैं सुत गोस्वामी। तो इसीलिए अगले एक दो अध्यायों में वो भूमिका दे रहे हैं। तो श्लोक क्रमांक 12 से 34 तक अश्वत्थामा को कैसे अर्जुन ने पकड़ा, अश्वत्थामा ने क्या किया, कैसे अर्जुन ने उसको पकड़ा, पकड़कर लेकर आए, ये वर्णन श्लोकों में किया गया। और फिर अंतिम विभाग 35 से लेकर 58 श्लोक तक अलग अलग वाद हैं, लोग अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, इसको मारना चाहिए या छोड़ देना चाहिए अश्वत्थामा को। तो ऐसे ये पूरा विभाग है और अंत में अर्जुन एक निर्णय लेते हैं, भगवान निर्णय अर्जुन पर छोड़ देते हैं। तो वो निर्णय क्या था ये अंत में बताया गया। तो ऐसे ये पूरा अध्याय, सातवां अध्याय बटा हुआ है। तो पहले श्लोक से जब प्रश्न किया तो सुत गोस्वामी बताने लगे कि व्यासदेव ने भक्ति में अपने को स्थिर रखते हुए ध्यान करना प्रारंभ किया, भगवान से वो जुड़े भक्ति योग के द्वारा। तो बहुत महत्वपूर्ण बात सुत गोस्वामी कहते हैं कि ये जो ग्रंथ अब प्रकट होने वाला है ये भक्ति से परिपूर्ण है, और व्यक्ति की पूर्णता भक्ति में ही होती है, क्योंकि जब तक व्यक्ति भक्ति नहीं करता, अन्य कोई मार्ग करता रहे, वर्णाश्रम का पालन करे, लेकिन वर्णाश्रम के मूल उद्देश्य श्री कृष्ण को भूल जाए तो फिर कोई लाभ नहीं है। तो इसीलिए अपने अपने कर्तव्यों को करते हुए श्री कृष्ण की प्राप्ति करना ये आवश्यक है, भक्ति में श्री कृष्ण से जुड़ना ये आवश्यक है। तो इसीलिए ऐसे व्यासदेव ने ध्यान करना प्रारंभ किया, और ध्यान में क्या देखा उन्होंने, उन्होंने भगवान को देखा, भगवान के सुंदर रूप को, और भगवान के पीछे खड़ी हुई माया शक्ति को भी देखा। वो माया शक्ति जो जीवों को मोह में डाल देती है, शोक में डाल देती है, भयभीत कर देती है, ऐसी माया शक्ति को देखा। और उन्होंने देखा कि कैसे जीव इस माया के प्रभाव में, ये तीन गुणों के प्रभाव में कितना कष्ट पा रहे हैं। दरअसल इस जगत में हम लोग जब रहते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं सुखी होने का, लेकिन ये जो माया शक्ति है भगवान की, ये हमें सुखी होने नहीं देती। केवल कष्ट है इस जगत में, जिनको कभी कभी हम सुख मान लेते हैं, दो कष्टों के बीच के समय को हम सुख मान लेते हैं और उसी सुख के लिए हम अपना सारा जीवन व्यर्थ कर देते हैं और अंत में कुछ प्राप्त नहीं करते। तो जब व्यासदेव ने ऐसे देखा तो उस समय उन्होंने जीवों के लाभ के लिए, भक्ति से परिपूर्ण, कृष्ण की लीलाओं से परिपूर्ण श्रीमद् भागवत की रचना की। तो श्रीमद् भागवत की रचना हुई है उन जीवों के लिए जो मोह में पड़े हुए हैं, जो कष्ट में पड़े हुए हैं, उनसे बाहर निकलने के लिए, साथ ही साथ उन परमहंसों के लिए जो श्री कृष्ण की लीलाओं में आनंद लेते हैं। तो ये सब के लिए है। तो ऐसे व्यासदेव ने इस संहिता को लिखा, सात्वत संहिता, और इसका वर्णन करते हुए बहुत सुंदर श्लोक में सुत गोस्वामी कहते हैं, यस्यां वैश्वयमानायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोकमोह भयापहा। वो कहते हैं कि यस्यां वैश्वयमानायां, जो ये श्रीमद् भागवतम सुन लेता है, जिसकी रचना भक्ति से परिपूर्ण अभी व्यासदेव ने की, यस्य वैश्वयमानायां कृष्ण परम पुरुषे, जिसमें कृष्ण को परम पुरुष कहा गया है, तो ऐसा ये जो ग्रंथ है भक्ति रूपद्यते पुंसा, केवल श्रीमद् भागवत के श्रवण से भक्ति उत्पद्यते, भक्ति उत्पन्न हो जाती है हृदय में, और जैसे ही भक्ति उत्पन्न होती है शोक मोह भयापहा, जो भी शोक है व्यक्ति के हृदय में, मोह है, भय है, वो दूर हो जाता। दरअसल इस जगत में हम इन तीन चीजों से बंधे हुए हैं। जो चीज हमें प्राप्त नहीं हो पाती हम उसके लिए शोक करते हैं, मोह में होते हैं, इसीलिए कई चीजों की आकांक्षा करते हैं, और जब वो चीजें मिल जाती हैं तो उनके खो जाने का भय हमें रहता है। बस यही हमारा जीवन है, शोक मोह भय। इसीलिए जो भक्त है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, न शोचति न कांक्षति, वो हर प्रकार के शोक से मुक्त है, वो किसी चीज के लिए शोक नहीं करता, क्योंकि वो हर अवस्था को भगवान की कृपा मांगता है, इसलिए उसके लिए शोक नहीं है, ना ही वो मोह में है, क्योंकि वो भगवान से संबंधित है, परम सत्य से संबंधित है। जब तक हम कृष्ण से संबंधित नहीं होते हैं तब तक जो कुछ भी है वो असत है, और इसीलिए चिंता है, इसीलिए कष्ट है। प्रहलाद महाराज अपने पिता को कहते हैं, जब पिता ने पूछा कि इस जीवन में करने योग्य चीज क्या है, सबसे श्रेष्ठ चीज क्या है, मेरे पुत्र बताओ, हिरण्यकश्यप सोच रहा था कि प्रहलाद कहेंगे कि हाँ राजा बनना, लोगों पर राज्य करना, असुरों के राज्य को फैलाना श्रेष्ठ चीज है, लेकिन प्रहलाद ने कहा, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिना सदा समुद्वेग्न धियान सत्ग्रहा हित्वात पातं ग्रहंधकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। अपने ही पिता को उपदेश दे रहे हैं प्रहलाद, वो पिता जो तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं मारने के लिए, उनको कह रहे हैं तत्साधु मन्ये असुर वर्य देहिना, हे असुर श्रेष्ठ, अपने पिता को कह रहे हैं, हे असुर श्रेष्ठ, अगर आप पूछ रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ क्या है, तत्साधु मन्ये, तो सुनिए कि क्या श्रेष्ठ है, सदा समुद्विग्न असत ग्रहान। तत्साधु मन्ये असुर वर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न असत। जब तक व्यक्ति असत को पकड़े रहता है, सदा समुद्विग्न ध्यान असत ग्रहान, हमेशा समुद्विग्न चिंता में रहता है, क्योंकि असली आनंद सत से है, जब हम अपने आप को परम सत्य से, ये मोह को त्याग कर सत्य से संबंधित करते हैं, तब असली आनंद है। क्योंकि कृष्ण सारे आनंद के स्रोत हैं, सारा आनंद उनसे आता है। जब हम ऐसे स्रोत से जुड़ जाते हैं तब क्या होता है, ये जो उद्विग्नता है, ये जो कष्ट है, ये जो चिंताएं हैं, शोक मोह भय चला जाता है। और इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, हितवात पातम ग्रह अंधकूपम। आप घर में पड़े हुए हो, अंधे कुएं में पड़े हुए हो, अपने आप को बहुत सुखी मान रहे हो, शक्तिशाली मान रहे हो, कर्तव्य तो ये है, हितवात पातम ग्रह अंधकूपम वनं गतो यत् हरिमाश्रयेता। आपको वन में जाना चाहिए और श्री हरि की शरण लेनी चाहिए। तो जीव के लिए करने योग्य कार्य प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इस अंधे कुएं से निकलो, जिसको आप अपना ग्रह मानते हो। हितवात पातम ग्रह अंधकूपम वनं गतो यत् हरिमाश्रयेता। वन में जाओ। प्रभुपाद लिखते हैं कि वन में जाने का अर्थ क्या है, वृंदावन जाना चाहिए, भगवान की शरण लेनी चाहिए। तो हितवात पातम ग्रह अंधकूपम, क्या सबको घर छोड़ देना चाहिए, क्या सबको पत्नी बच्चों का त्याग करके वन में चले जाना चाहिए? प्रहलाद महाराज ये कह रहे हैं नहीं। हितवात पातम ग्रह अंधकूपम, उसी भावना में पड़े रहने नहीं चाहिए कि सब कुछ यही है, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा समाज, बस यही मेरा जीवन है। स्वजन पालन कोरी एक मने, ये नहीं सोचना है कि बस अपने परिवार का मैंने पालन अच्छी तरह कर लिया, उनको धन दे दिया, उनको सुविधाएं दे दी, मेरा जीवन सफल नहीं। ग्रह अंधकूपम, अंधे कुएं में गिरे हुए होंगे आप अगर ऐसा सोचेंगे। वनं गतो यत् हरिमाश्रयेता, अर्थ क्या है, घर में रहते हुए ही घर को वृंदावन बनाए, उस वन में रहे जहां श्री कृष्ण रहते हैं, अपने घर को वृंदावन बनाइए। त्यागने की आवश्यकता नहीं है, हां एक समय आने पर त्यागना भी चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है कि व्यक्ति अपने बचपन से 25 वर्ष की उम्र तक ब्रह्मचारी रहे और फिर उस समय वो निर्णय ले कि क्या वो गृहस्थ जीवन में जाना चाहता है या फिर सीधे सन्यास की ओर। कुछ लोग सीधे सन्यास में जाते हैं, कुछ लोग गृहस्थ जीवन में, और फिर गृहस्थ जीवन में 25 वर्ष वहां बिताए और 50 की उम्र, देखिए हिंदी में भी 50 के बाद जो शब्द आता है उसको 51 कहते हैं, 51, चलो वन में जाओ। लेकिन व्यक्ति सुनता नहीं है, 51 हो जाए, 61 हो जाए, 71 हो जाए, घर को छोड़ता नहीं, आसक्ति। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं एक समय तो छोड़ना चाहिए, लेकिन जब तक परिवार में है तब भी भावना यही होनी चाहिए, हरिमाश्रय, भगवान श्री हरि का आश्रय लें। तो जब तक हम ऐसी भावनाओं में पड़े रहते हैं, असत को पकड़े रहते हैं, तब तक हरि का आश्रय नहीं ले पाते। लेकिन ये भागवतम ये ऐसी ग्रंथ है, भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापहा। और जब भक्ति हृदय में आ जाती है तो जितना शोक है, कभी कभी हम शोक करते हैं, हाय हमारे से चला गया, हमें मिला होता तो कितना अच्छा होता। भक्ति में कोई शोक नहीं है, भक्ति ऐसी है, सुख मिला भगवान की कृपा, दुख मिला भगवान की कृपा, समान रहना ये भक्ति है। मान मिला भगवान की कृपा, अपमान मिला भगवान की कृपा, ये भक्ति है। इसलिए कोई शोक नहीं, कोई भय नहीं, क्योंकि एक ही चीज से आ सकते हैं और वो है कृष्ण, और कृष्ण को आपके हृदय से कोई चुरा नहीं सकता, इसीलिए भय किसका। हमें भय होता है हमारी चीजों के चले जाने का, हमारे प्राण चले जाने का, मृत्यु का भय, धन का भय, मान अपमान का भय। एक भक्त के लिए कोई भय नहीं है, क्योंकि उसकी एक ही आसक्ति है और वो है कृष्ण। और कृष्ण ऐसी आसक्ति है जो आपके हृदय को शुद्ध करते हैं। और कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आपसे कोई छीन नहीं सकता। कोई व्यक्ति आपके हृदय से कृष्ण को जबरदस्ती निकाल नहीं सकता। केवल आपकी इच्छाएं उनको दूर रखती है, केवल आपका अहंकार उनको दूर रखता है। इसीलिए शोक मोह भयावह, जब भक्ति करते हैं तो ये सारी चीजों से दूर हो जाते हैं। किसी चीज का शोक नहीं, जो है वो कृष्ण की कृपा है। मोह नहीं, क्योंकि सत्य से जुड़ गए हैं, परम सत्य से। और परम सत्य का अर्थ है मोह से परे। इसीलिए व्यास देव ने जब भगवान को देखा और उनके पीछे खड़ी हुई माया को देखा, ये परछाई है, भगवान के सामने नहीं आ सकती माया। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण ताहा नहीं माया र अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार। जहां कृष्ण है वहां अंधकार, वहां माया हो नहीं सकती। हम लोग देखते हैं जब सूर्य निकल जाता है तो कहीं अंधकार नहीं रहता। जहां कृष्ण ताहा नहीं माया र अधिकार। अगर अपने हृदय में हम कृष्ण को ले आते हैं तो इस हृदय से माया का अधिकार समाप्त हो जाता है। आज हमारी इच्छाओं पर, हमारी चेतना पर, हमारे हृदय पर माया का अधिकार है। माया ने कब्जा करके रखा है, अधिकार उसका है। इसीलिए हमें माया के अधीन रहना पड़ता है। ये अर्थ है अधिकार होने का। हम माया के अधीन हैं, मोह के अधीन हैं, मोहवश हम कार्य करते हैं। लेकिन जहां कृष्ण ताहा नहीं माया का अधिकार। जिस दिन कृष्ण को हृदय में ले आएंगे माया का अधिकार समाप्त हो जाता है, फिर कृष्ण का अधिकार होता। और जिस हृदय में कृष्ण का अधिकार है, शोक मोह भयावह, कोई शोक नहीं, कोई मोह नहीं, कोई भय नहीं। तो इसीलिए यहां पर सूत गोस्वामी बताने लगे कि ऐसे ग्रंथ की रचना व्यास देव ने की। तो फिर आगे जैसे ही उन्होंने ये कहा, और फिर उन्होंने कहा कि इस ग्रंथ को, आठवें श्लोक से वो वर्णन करते हैं कि उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की और अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को उसका अध्ययन करा दिया। जैसे ही उन्होंने कहा, शौनक आदि ऋषियों के मन में एक प्रश्न आ गया कि आप तो कहते हैं कि जो सुखदेव गोस्वामी हैं वो पूर्ण रूप से विरक्त थे, कुछ उनकी इच्छा नहीं थी, कुछ नहीं चाहते थे, तो ऐसा व्यक्ति जो कुछ नहीं चाहता था, पूर्ण रूप से विरक्त था, इतने बड़े ग्रंथ को पढ़ने के लिए क्यों आया? 18,000 श्लोक। अरे अध्ययन तो वो करता है जिसको कुछ प्राप्त करना होता है। जैसे हम लोग देखते हैं पाठशालाओं में, विश्वविद्यालयों में लोग जाकर पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं। किस लिए? कुछ पाना चाहते हैं, कोई पदवी मिल जाए, कोई डिग्री मिल जाए, उसके लिए पढ़ाई करते हैं। अगर किसी की कोई इच्छा ही नहीं है तो पढ़ाई क्यों? और सुखदेव गोस्वामी को तो कुछ नहीं चाहिए था, वो तो वैसे ही मुक्त थे, आत्म साक्षात्कारी पुरुष थे। फिर उन्होंने आकर इतना मेहनत क्यों किया? इतने सारे श्लोकों को सुनना, पढ़ना, पूरा भागवतम क्या आवश्यकता थी? ये प्रश्न किया। और उस प्रश्न के उत्तर में सुत गोस्वामी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। वो कहते हैं, यही तो भगवान श्री हरि के महत्व है, यही तो उनका गुणगान है। और वो बहुत प्रसिद्ध श्लोक को कहते हैं, वो कहते हैं, आत्मरामश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे कुर्वन्ति हेतु किं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरि। यही तो हरि के गुण हैं। क्या गुण हैं? कि ऐसे लोग आत्माराम मुनयो निर्ग्रंथ, अर्थात ये तीन प्रकार के लोगों का वर्णन करते हैं। आत्मरामश्च मुनयो निर्ग्रंथा भी उरुक्रमे, उरुक्रमे मतलब भगवान जो बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं। तो कहने लगे कि ऐसे भी जो लोग हैं, पहले कौन? आत्माराम। आत्माराम अर्थात जो अपने आप में संतुष्ट हैं, कुछ और उनको नहीं चाहिए, कोई बाहर की चीज से वो आनंद नहीं लेते हैं, आत्माराम है, अपने आप में संतुष्ट। वैसे आत्माराम शब्द के कई अर्थ हैं। ये इतना प्रसिद्ध श्लोक है, चैतन्य महाप्रभु ने दो बार इसकी व्याख्या की। एक बार उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ और दूसरी बार सनातन गोस्वामी के साथ, और उन्होंने इस एक श्लोक के 61 अलग अलग अर्थ दिए एक ही श्लोक के, और हर अर्थ दूसरे से अलग था, भिन्न था। तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, इसमें कई व्याख्याएं हैं, एक एक शब्द को लेकर उसके अलग अलग अर्थ लगाए गए हैं। तो आत्मा राम अर्थात जो आत्मा में आनंद लेते हैं, जिन्हें शरीर से कुछ लेना देना नहीं। दूसरा शब्द का अर्थ यह भी हो सकता है कि आत्मा शरीर को भी कहा जाता है कहीं कई स्थानों पर। तो आत्मा राम अर्थात जो शरीर में आनंद लेते हैं, बड़े भौतिक स्तर पर हैं, उनके लिए भी। तो आत्मा राम मुनयो, मुनयो अर्थात वो मुनि जो मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए शास्त्रों पर मनन करते हैं, भक्ति में मनन करते हैं, ऐसे मुनियों के लिए। और तीसरे निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ अर्थात ऐसे व्यक्ति जो सदैव ग्रंथों में रहते हैं, एक अर्थ सदैव ग्रंथों में अर्थात हमेशा शास्त्र पढ़ना, शास्त्रों से आनंद लेना, और दूसरा अर्थ निर्ग्रंथ है जिन्होंने शास्त्रों को त्याग दिया। तो हर प्रकार का व्यक्ति, चाहे वो शास्त्र मानता हो नहीं मानता हो, निर्ग्रंथ शास्त्रों को त्याग देता है, या फिर वो व्यक्ति जो शरीर में आनंद लेता हो या आत्मा में आनंद लेता हो, या फिर वो व्यक्ति जो मनन से चिंतन से भगवान को पाने का प्राप्त कर रहा, भगवान को पाने का प्रयास कर रहा हो, हर प्रकार के व्यक्ति के लिए इत्थम भूत गुणों हरि, भगवान की कथा ऐसी है कि लोग आकर्षित हो जाते हैं, ऐसे भगवान की कथा है। तो ऐसे उन्होंने कहा, और इसी कारण से सुखदेव गोस्वामी जैसे विरक्त व्यक्ति भी भगवान की कथा में रुचि लेने लगे और वो भाग कर आए। जैसे हम जानते हैं कि वो तो चले गए थे वन में, हमने सुना पीछे, लेकिन जब उन्होंने भागवत के 2 श्लोक सुन लिए, कुछ श्लोकों को कहा व्यासदेव के शिष्यों ने, उन श्लोकों को सुनकर भाग कर आए कि अरे और सुनना चाहता हूं, ये कौन है हरि, इतने दयालु कम वा दयालु शरणम ब्रजे मां, कौन है ये हरि, सुनना चाहता हूं उनके विषय में। व्यासदेव ने कहा बैठो, मैं सुनाता हूं भागवत। तो ऐसे भागवत व्यासदेव ने अपने पुत्र को सुनाई। तो ये वो भागवत है। अब इसका वर्णन करने के बाद अब भागवत के कथा, कृष्ण कथा, अब वो वर्णन सूत्र गोस्वामी करना चाहते थे परीक्षित महाराज के जन्म का, लेकिन थोड़ी बहुत भूमिका दे रहे हैं कैसे जन्म हुआ, उसके पहले की कथा। तो वर्णन करते हैं कि महाभारत का युद्ध हो गया, प्रायः समाप्त हो गया, 17 दिन हो गए थे, और अंत में कौरवों की तरफ से केवल 3 लोग बचे थे, कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। ये वो समय था, सुत गोस्वामी वर्णन करते हैं, जब भीम की गदा से घायल होकर दुर्योधन पड़ा हुआ था, मृत्यु का इंतजार कर रहा था, उसकी जंघा को तोड़ दिया था भीम ने, और भीम पड़ा हुआ, दुर्योधन पड़ा हुआ इंतजार कर रहा था। और ऐसे समय में, रात्रि के समय, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए विचार कर रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, अभी भी हमारा राजा जीवित है, मरा नहीं है, कुछ ऐसा करें कि उसको प्रसन्न कर लें। तो ऐसे विचार करते हुए उन्होंने देखा कि रात्रि के समय जो उल्लू होता है, उल्लू जानते ना आप लोग, आउल उसको क्या कहते हैं, यहाँ पे समझते हैं ना आप लोग कि समझाना है, क्या बोलते हैं उल्लू को कन्नड़ में, कोंकणी में? हाँ, अच्छा ठीक है, आप लोग जानते हैं, कोई बात नहीं। तो उन्होंने देखा कि रात्रि के समय जो उल्लू है, क्योंकि उसको रात में दिखाई देता है, तो वो बड़े बड़े जो पक्षी हैं उनको भी मारकर नीचे फेंक देता है पेड़ से। ऐसा उन्होंने देखा, पेड़ के नीचे कौवा है, अंधे है, आराम से मार देता है, क्योंकि उनको दिखता नहीं है रात में, वो सोए होते हैं, अचानक आता है, आक्रमण करता है, मार देता है। तो अश्वत्थामा ने सोचा कि अपने राजा को अभी भी प्रसन्न करने का समय है, क्योंकि इस समय पांडवों के जो तरफ है, पांडव सोच रहे हैं कि सब समाप्त हो गया, दुर्योधन को मार दिया, सबको मार दिया, कौन बचा अब? तो वो लोग बड़े आराम से सो रहे हैं, ये समय है जब मुझे जाकर उनको मारना चाहिए। महाभारत में विस्तार से वर्णन है, यहां पर तो इतना विस्तार से नहीं है। तो ऐसे रात्रि के समय वो चले गए मारने के लिए, और पांडवों के खेमे में सब आराम से सो रहे थे, क्योंकि सब युद्ध समाप्त हो गया। और इतना ही नहीं, अश्वत्थामा की इच्छा थी कि सोते हुए पांडवों को मारूंगा मैं। तो अश्वत्थामा उनके, वैसे एक स्थान पर कहा गया है कि अश्वत्थामा को शिवजी ने शक्ति प्रदान की, अन्यथा वो अकेला इतना उत्पात नहीं मचा सकता। बहुत उसने, अश्वत्थामा ने दोनों से कहा, कृतवर्मा कृपाचार्य आप बाहर खड़े रहिए, किसी को अंदर मत आने दीजिए, और वो जाकर अंदर सबको उसने मारना शुरू किया जो मिले। दृष्टद्युम्न को उस समय मारा, तब तक दृष्टद्युम्न मरे नहीं थे। तो ऐसे बहुत मारा किया, और पांच लोग एक साथ सोए हुए थे, पांच, तो उन पांचों को मार दिया, ये सोच के कि ये पांडव हैं। दरअसल वो द्रौपदी के पांच पुत्र थे। तो उस समय भगवान की योजना देखिए, अभी युद्ध पूरा समाप्त नहीं हुआ था, 17 दिन हुए थे अभी अभी मारे, तो भगवान ने क्या कहा पांडवों से, अब युद्ध हो गया, अब यहां रहने की क्या आवश्यकता है, चलो हस्तिनापुर जाएंगे। तो पांचों को हस्तिनापुर ले गए युद्ध भूमि से, बाकी सबको युद्ध भूमि में छोड़ दिया भगवान ने, द्रौपदी के पांच पुत्रों को वहां छोड़ दिया, लेकिन पांडवों को वो ले गए हस्तिनापुर कि चलो हस्तिनापुर जाएंगे। तो पांडवों ने कहा ठीक है, अब तो वैसे भी दुर्योधन भी मर गया, अब क्या करना है, यहां रुक के किससे युद्ध करना है? अब उनके लिए तो कोई युद्ध करने योग्य था नहीं, जब राजा ही मर जाता है तो युद्ध समाप्त हो जाता है, तो वो चले गए। तो उस समय में इसने, अश्वत्थामा ने इनके पुत्रों को मार दिया, और फिर उनके सिर को काट कर लेकर गया दुर्योधन को उपहार देने के लिए। देखिए कैसे कैसे उपहार लोग सोच सकते हैं देने के लिए। उपहार ऐसा होना चाहिए जो कृष्ण का स्मरण कराए, ऐसा उपहार नहीं जो गंदा खून से रंगा हुआ लेकर आए। तो दुर्योधन ने उस समय जब उन पांचों सिरों को देखा, तो दुर्योधन ने पकड़ा, पहले तो उसको विश्वास नहीं हुआ, अश्वत्थामा ने आके कहा मैंने पांडवों को मार दिया और तुम्हारे लिए इन पांच सिरों को लेकर आया हूं पांडवों के लिए। दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ, ये अश्वत्थामा नहीं मार सकता, जानता था दुर्योधन, अश्वत्थामा अकेले पांडवों को नहीं मार सकता, सोते हुए भी नहीं मार सकता था, तो इसीलिए विश्वास नहीं, खास करके भीम को, कि भीम को मार देगा दुर्योधन ने। तो दुर्योधन ने कहा दिखाओ कहां है, तो सिर दिखाया, तो दुर्योधन ने दबाए वो सिर, तो बड़े कोमल थे वो। तो दुर्योधन ने कहा ये पांडवों के सर नहीं है, तुमने गलती कर दी। और फिर देखा तो अरे ये द्रौपदी के पुत्र है। तो उस समय श्राप दिया दुर्योधन ने अश्वत्थामा को। देखिए दुर्योधन जैसा व्यक्ति भी ये नहीं चाहता था कि ऐसे बालकों की हत्या की जाए, छोटे बालक थे, तो उनको मार दिया। तो उस समय श्राप दिया अश्वत्थामा को, तुमने बहुत घिनौना घृणित कार्य किया है, सोते हुए बालकों को मार दिया, सारा तुम्हारा तेज चला जाए। और चला गया उसका तेज। तो देखिए दुर्योधन भी, हालांकि हम कहते हैं असुर है या ऐसे भाव का था, लेकिन नियमों का पालन वो करता। तो उसको पता लग गया, केवल उसने उनके सिरों को देखा, बड़े कोमल, ये पांडवों के हो ही नहीं सकते, पांडवों के सिर इतने कोमल हो ही नहीं सकते, पांडव शक्तिशाली। तो उस समय अश्वत्थामा चला गया। अब इधर सुबह जब द्रौपदी को पता चला, तो द्रौपदी बहुत विलाप करने लगी अपने पुत्रों के लिए, और अर्जुन ने उसको विलाप करते हुए देखकर, आगे ये कथा इस भागवत में कहते हैं कि अर्जुन उसको विलाप करते हुए देखकर सांत्वना देते हैं कि शांत रहो, मैं वचन लेता हूं, तुमको मैं वचन देता हूं कि ये अश्वत्थामा को मैं मार कर लाऊंगा तुम्हारे सामने, जिसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है मैं अभी उसको जाकर पकड़कर मार कर लेकर आऊंगा, तुम चिंता नहीं करना। और ये कहकर वो चल दिए अपने रथ पर सवार होकर अश्वत्थामा को मारने के लिए। तो अश्वत्थामा ने जब देखा तो पहले ही पुत्रों को मारने के कारण अश्वत्थामा का जितना बल था वो क्षय हो गया था। तो जब अर्जुन भागने लगे अश्वत्थामा के पीछे रथ लेकर, उसने बड़े प्रयास किया भागने का, क्योंकि उसका बल क्षीण हो गया था, वो अर्जुन का सामना नहीं कर पाया। और जब उसने देखा कि अब कोई उपाय नहीं है, अर्जुन मुझे पकड़ लेगा, मार देगा, तो उसने उस समय एक बहुत बड़ी गलती की, और वो था उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मास्त्र, अर्जुन कृष्ण के साथ जा रहे हैं रथ पे, अचानक देखा उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और सारे पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया, धूल आंधी और एकदम अंधकार। अर्जुन भी घबरा गए, अर्जुन ने कृष्ण से पूछा ये क्या है, ये क्या हुआ अचानक। तो उस समय कृष्ण ने कहा कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है और अब तुम तुरंत ब्रह्मास्त्र को परास्त करने के लिए और एक ब्रह्मास्त्र छोड़ो, क्योंकि उसका कोई और उपाय नहीं है, ब्रह्मास्त्र केवल ब्रह्मास्त्र से रोका जा सकता है, अन्यथा इस सारा ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा, ये मूर्ख जानता नहीं है ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना। दरअसल अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना आता था, उसको वापस बुलाना नहीं आता था, ये उसकी मूर्खता थी, ये उसकी कमी थी। लेकिन अर्जुन ब्रह्मास्त्र चलाना भी जानता था, वापस बुलाना भी जानता था। तो अब उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, अब उसके पास कोई उपाय नहीं था, वापस नहीं बुला सकता था ब्रह्मास्त्र को। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा कि तुम और एक ब्रह्मास्त्र छोड़ो ताकि उसको रोक सको। तो उस समय अर्जुन ने, बहुत सुंदर वर्णन है कि अर्जुन ने हाथ में जल लिया, आचमन किया कृष्ण की प्रदक्षिणा की और फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो अब जब दो ब्रह्मास्त्र टकराए तो एक ही ब्रह्मास्त्र काफी है ब्रह्मांड का नाश करने के लिए, अब ये दूसरा ब्रह्मास्त्र, तो दो ब्रह्मास्त्र जब टकराए तो चारों तरफ अग्नि अग्नि फैल गए, प्रकाश। तो अर्जुन और घबरा गए कि ये क्या हो गया, मैंने तो रोकने के लिए कहा था। तो कृष्ण ने कहा कि अब तुम दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाओ, तुम्हारे अंदर शक्ति है। तो उस समय अर्जुन ने उन दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस बुला लिया और फिर अब अश्वत्थामा को मारना था। कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि भले ही ये ब्रह्म बंधु है, ब्रह्म बंधु अर्थात ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, लेकिन ब्राह्मण के योग्य कार्य नहीं किए इसने, बालकों को मार दिया, सोते हुए लोगों को मारा, युद्ध के नियम का पालन नहीं किया इसने, ना तो ब्राह्मण का पालन किया ना युद्ध के नियम का पालन किया, और ऐसे सोते हुए को मारने के कारण ये आतताई है, तो तुरंत इसको मार दो। अब देखिए अर्जुन को उन्होंने आदेश दिया। अब श्री कृष्ण का आदेश है, श्री कृष्ण कह रहे मार दो, और श्री कृष्ण याद दिलाया तुमने द्रौपदी को वचन दिया है तुम इसको मार कर लेकर आओगे, तो ये आतताई है, इसने युद्ध के नियमों को तोड़ा है, ब्रह्म बंधु है, द्रौपदी को तुमने वचन दिया है, अब मारो इसको। अर्जुन ने नहीं मारा। देखिए यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम कहते हैं भक्त मतलब वो जो कृष्ण के आदेश का पालन करे, यहां कृष्ण आदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं मारो, लेकिन अर्जुन ने नहीं मारा, अर्जुन ने उसको बंदी बनाया और लेकर हस्तिनापुर आ गए। तो क्यों नहीं मारा, कृष्ण कह रहे हैं मारो, अरे अभी भगवत गीता में कहा था कृष्ण ने थोड़े समय पहले 18 दिन पहले कि जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, अर्जुन ने वचन दिया था करिष्ये वचनं तव, और अभी 18 दिन भी पूरे नहीं हुए पालन नहीं कर रहा, क्यों? आचार्य समझाते हैं कि कभी कभी भगवान परीक्षा लेते हैं, ये अर्जुन की परीक्षा थी कि क्या वो धर्म में सच्चा उतरता है या नहीं। भगवान नहीं चाहते थे कि मारना चाहिए, लेकिन अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे, अरे तुमने वचन दिया है, तुम्हारा वचन महत्वपूर्ण है, लेकिन अर्जुन ने कहा नहीं, उसने बंदी बना लिया। तो कभी कभी भक्ति में परीक्षा होती है, हमारे सामने धर्म आता है कि हमें तो ये करना है, ये हमारा धर्म है, लेकिन एक और हम जानते हैं कि ये गलत भी है। तो कभी कभी भगवान ऐसे भक्तों की बड़ी कड़ी परीक्षा लेते हैं, और कभी कभी नहीं, हर एक भक्त के जीवन में भगवान परीक्षा लेते हैं ये देखने के लिए कि उसने भक्ति के सिद्धांतों को ठीक से समझा या नहीं। अर्जुन ने भक्ति के सिद्धांत जो भगवद गीता मैंने बताई थी उसको ठीक से समझा या नहीं, ये परीक्षा थी। पहले पढ़ा दिया, क्लास खत्म हो गई, अब एंड में परीक्षा ले रहे हैं 18 दिन बाद। तो भगवान ऐसे परीक्षा लेते हर भक्त की, और हर भक्त के जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब वो दुविधा में पड़ जाता है। भगवान की परीक्षा में उत्तीर्ण होता है या नहीं ये किस पर आधारित है, उसने कितनी अच्छी तरह गुरु से, प्रामाणिक गुरु से शास्त्रों को समझा है। अगर उसने समझा है शास्त्रों को, पढ़ा है, जीवन में उतारा है, तो ऐसी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा जब भगवान परीक्षा लेंगे। भगवान कई स्थानों पर हम लोग देखते हैं भगवान ने भक्तों की परीक्षा ली। भीष्म को अपने विरुद्ध युद्ध करने के लिए प्रेरित करना, क्या ये भीष्म की परीक्षा नहीं थी? भीष्म जैसे महाजन, बड़े भक्त, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, तीर चला रहे हैं कृष्ण पर, उनके लिए कितना कष्ट होगा। वो भीष्म जिन्होंने अपना देह छोड़ते समय, देह जब उनको तीर लग रहे थे, अर्जुन तीर चला रहा था, और एक एक तीर जब उनके शरीर में प्रवेश करता तो उनके मुख से कृष्ण का नाम निकलता, गोविंद मधुसूदन ऐसे बोल रहे थे हर एक तीर पर। तो ऐसे महान भक्त, क्या उनके लिए परीक्षा नहीं थी दुर्योधन का साथ देने के लिए? लेकिन उन्होंने परीक्षा को उत्तीर्ण किया, अपने धर्म का पालन किया। तो ऐसे अर्जुन के लिए परीक्षा दी थी भगवान ने, मार डालो। अर्जुन ने कहा नहीं, इसको बंद के ले जाते, बंदी बना के ले आए। अब बंदी बनाकर ले आए, द्रौपदी के सामने लाए, पशु की तरह बांध कर रस्सी से, जैसे पशु को रस्सी से बांध कर लाते हैं ऐसे ले आए, उसके सामने द्रौपदी के फेंक दिया, लो मैंने तुमको वचन दिया अब मारो इसे, तुम्हारा ये, अब ये तुम्हारा पशु है, कैदी। द्रौपदी ने जब देखा तो द्रौपदी का हृदय द्रवित हो गया। स्वाभाविक है, एक माता का हृदय, एक स्त्री का हृदय, तो वो द्रवित हो गया। उसने देखा, उसने क्या देखा, उसने अश्वत्थामा के रूप में अपने बच्चों के हत्यारे को नहीं देखा, उसने अश्वत्थामा के रूप में एक ऐसे पुत्र को देखा कि अगर जिसे मार दिया गया तो उसकी माता रोएगी जैसे मैं रो रही, कृपी। उसकी माता का बब, द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम था कृपी, कृपाचार्य की बहन है वो कृपी। तो उन्होंने कहा, द्रौपदी ने जब देखा बंधा हुआ तो उसने उसमें ब्राह्मण को देखा, गुरु को देखा, कृपी के पुत्र को देखा, अपने बच्चों के हत्यारे को नहीं देखा। ये द्रौपदी की दृष्टि थी, ये एक स्त्री का भाव है, ये एक माता का भाव है, कोमल हृदय, ये केवल एक माता ही कर सकती है। तो उसने देखा और उसने कहा कि नहीं, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण की हत्या पाप है शास्त्रों में, और दूसरी ओर ये केवल ब्राह्मण ही नहीं, ये हमारे गुरु के समान है, क्योंकि गुरु जब नहीं होते, द्रोणाचार्य नहीं है, तो अपने पुत्र के रूप में जीते हैं, तो इसलिए हमारा ऋण है गुरु पर। अर्जुन से उन्होंने कहा, तुमने ये धनुष विद्या कहां से सीखी? द्रोणाचार्य से, ऋण है तुम्हारा उनके ऊपर, और आज तुम उनके पुत्र को मारना चाहते हो? नहीं, तो ये ब्राह्मण है, हत्या नहीं करनी चाहिए, गुरु है ये हमारे लिए, भले ही इसने बहुत घृणित कार्य कर दिया लेकिन आज भी हमारे लिए पूजनीय है। ये कौन कह रही है? द्रौपदी, जिसके 5 पुत्रों को सोते हुए मार दिया, ये धर्म है। द्रौपदी हमें सिखला रही है कि हर अवस्था में धर्म का पालन होना चाहिए। अपने ऊपर कष्ट आए तो हमें दूसरे के ऊपर अन्याय नहीं करना चाहिए, अपने ऊपर कष्ट आए तो चुपचाप सहन कर लेना चाहिए। द्रौपदी सहन कर रही है, चाहती तो मार सकती थी, कोई अश्वत्थामा को बचाने वाला नहीं था। अर्जुन खड़े हैं तैयार मारने के लिए, भीम खड़े हैं तैयार, कृष्ण कह रहे हैं मारो, लेकिन द्रौपदी धर्म का पालन करती, ये सबकी परीक्षा का समय था। भगवान परीक्षा ले रहे थे द्रौपदी की भी, क्या वो अपने ऊपर हुए अन्याय को बदला लेने के लिए दूसरे पर अन्याय कर सकती है, कि दूसरे को मार सकती है केवल बदले की भावना से। तो शास्त्र ऐसे नहीं सिखलाते कि हमें बदले की भावना से किसी दूसरे का गलत कर देना चाहिए। अपने साथ गलत हुआ द्रौपदी ने स्वीकार किया, विलाप कर रही, ऐसा नहीं था कि दुख नहीं था, जो हुआ दुख था, लेकिन उस दुख के कारण दूसरे के साथ अन्याय नहीं किया उसने। तो द्रौपदी ने कहा इसको छोड़ दीजिए। नकुल सहदेव युधिष्ठिर सबने साथ दिया द्रौपदी का। युधिष्ठिर ने कहा द्रौपदी जो कह रही है वो सही है, करुणा से परिपूर्ण है, शास्त्र सम्मत है जो भी द्रौपदी ने कहा, इसके स्वभाव के अनुसार है। और तुरंत नकुल सहदेव ने कहा सही है, एकदम ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। भीम ने कहा नहीं, मार डालो इसको, ये योग्य नहीं है जीवित रहने के, इसने सोते हुए बालकों को मारा, युद्ध में सामने नहीं मारा, अगर युद्ध में मारा होता तो ठीक है, गुणगान करने योग्य होता, सोते हुए मासूम बालकों को मार दिया इसने रात्रि के समय, इसकी हत्या करो। तो अब एक तरफ भीम जो कह रहे हैं कि हत्या करनी चाहिए, अर्जुन इत्यादि सब छोड़ना चाहते हैं, और कृष्ण क्या कहते हैं, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये आतताई है। आतताई अर्थात प्रभुपाद वर्णन करते हैं तात्पर्यों में, अलग अलग प्रकार के आतताई होते हैं। आतताई मतलब एक वो व्यक्ति जो विष देकर मारने का प्रयास करे, दूसरा जो जलाकर, घर जलाकर मार दे, सोते हुए को जैसे मारा, किसी हथियार से आकर मारने का प्रयास करे, या फिर किसी का धन लूट कर ले जाए धोखे से, या किसी दूसरे की पत्नी के साथ गलत कार्य करे, तो ऐसे लोगों को आतताई माना गया है। भगवान कहते हैं आतताई है, इसको मारना चाहिए शास्त्र के अनुसार। तो अर्जुन से उन्होंने कहा अर्जुन तुम निर्णय लो, ये आतताई है, इसको मारना चाहिए, इसकी मृत्यु होनी चाहिए, और तुमने वचन भी दिया था, तुम्हारा भी वचन है, तुमने कहा था द्रौपदी को कि मारूंगे। लेकिन दूसरी ओर ये ब्राह्मण है, गुरु है, और इसको छोड़ भी देना चाहिए, अब तुम निर्णय करो और सबको संतुष्ट करो। कृष्ण ने कहा सबको संतुष्ट करो, मुझे भी संतुष्ट करो, द्रौपदी को भी संतुष्ट करो, भीम को भी संतुष्ट करो। भीम कह रहे मारो, द्रौपदी कह रहे, अब देखिए कैसे हो सकता है, दोनों कैसे संतुष्ट होंगे, या तो मारेगा तो भीम संतुष्ट होगा, अर्जुन नहीं मारता तो द्रौपदी संतुष्ट होगी, लेकिन भीम असंतुष्ट हो जाएंगे, अरे मैंने कहा था मारना, कृष्ण कह रहे मारना, तो अब दुविधा आ गई उसके लिए। और कृष्ण ने कहा तुम्हें दोनों को संतुष्ट करना है, ये नहीं कहा कि ठीक है तुम अपने मन से निर्णय ले लो, मारना है तो मारो, नहीं मारना है तो नहीं। तो अब अर्जुन के लिए दुविधा थी। देखिए ऐसी दुविधाएं हमारे जीवन में बहुत आती हैं, एक व्यक्ति को संतुष्ट करने जाए दूसरा दुखी हो जाता है, दूसरे को दुखी करने जाए तीसरा दुखी, उसको सुखी करने जाए तो तीसरा दुखी हो जाता है। हाँ ये तो होता ही है, इस जगत में केवल कृष्ण ही है जो सबको संतुष्ट कर सकते हैं, एक ही व्यक्ति है जो सबको संतुष्ट कर सकते हैं। हम लोग प्रयास करते हैं तो कुछ को संतुष्ट होते हैं, कुछ असंतुष्ट होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी उन्होंने प्रचार प्रारंभ किया, बहुत से लोग खुश थे, बहुत से लोग नाराज थे, लोग असंतुष्ट भी थे प्रभुपाद से कि आप पहले तो आपको समुद्र पार नहीं करना था सन्यासी होकर, फिर आपने समुद्र पार किया, फिर यवनों को, पाश्चात्य देश के लोगों को आप ब्राह्मण बना रहे हैं, ये भी गलत है, असंतुष्ट। प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त से भी लोग असंतुष्ट हो सकते हैं, केवल कृष्ण है जो सबको संतुष्ट करते हैं। तो कृष्ण ने यह कह दिया, अब अर्जुन के लिए बड़ी दुविधा थी क्या करे। तो अर्जुन ने बीच का उपाय निकाला, मुझे भीम को भी संतुष्ट करना है, मुझे द्रौपदी को भी संतुष्ट करना है। तो उन्होंने तलवार लेकर अश्वत्थामा के सर पे जितने बाल थे उनको काट दिया, उसके मस्तक पर एक मणि थी उसको काट के निकाल दिया और छोड़ दिया। तो ये अपमान जो उसका हुआ ये मृत्यु के समान था, मतलब उनको मार दिया उसने, मृत्यु भी का हो गई लेकिन छोड़ भी दिया, तो दोनों संतुष्ट हो गए। भीम भी संतुष्ट हो गए, हाँ ये सही किया, हाँ इसका ऐसा ही होना चाहिए, अब इसको घूमने दो ऐसे, क्योंकि मणि निकल गई सारी शक्ति चली गई और बाल काट दिए तो सब अपमान हो गए। ऐसा होता है क्षत्रिय के लिए, ब्राह्मण के लिए ऐसा अपमान भी सहना ये बहुत मृत्यु के समान बात है। तो इसीलिए उन्होंने ऐसे करके उसको छोड़ दिया कि जाओ ऐसे ही रहो। तो अश्वत्थामा फिर दुखी होकर, सारी शक्तिहीन होकर, बलहीन कांतिहीन होकर फिर वो वहां से चले गए। तो इस तरह ये सातवें अध्याय में वर्णन किया गया है कि किस किस प्रकार से अर्जुन के जीवन में दुविधा आई, द्रौपदी के जीवन में दुविधा आई, लेकिन उन्होंने धर्म के पालन को त्यागा नहीं। तो इस तरह से इस अध्याय में अश्वत्थामा का वर्णन करके अब अगला बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, सबसे पहली प्रार्थनाएं श्रीमद् भागवत में अर्पण होने जा रही हैं। तो अभी तक हमने सुना कृष्ण का भी वर्णन थोड़ा बहुत आया यहाँ पे आज, लेकिन अभी तक प्रार्थनाएं किसी ने अर्पण नहीं की। अब अगला अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, श्रीमद् भागवत की पहली प्रार्थना। श्रीमद् भागवत भरा हुआ है प्रार्थनाओं से, आगे हम लोग देखेंगे कई लोगों की प्रार्थनाएं, लेकिन सर्वप्रथम प्रार्थना एक स्त्री की प्रार्थना है, कुंती महारानी की प्रार्थना है। तो भागवत में कितना महत्व दिया गया है स्त्रियों को कि सबसे पहले, और भी इतने सारे महान भक्त हैं, शिवजी जैसे भक्त भी हैं जो प्रार्थना करेंगे भगवान कृष्ण के लिए, लेकिन सबसे पहला स्थान कुंती महारानी को दिया गया। तो अगले अध्याय में कल हम लोग चर्चा करेंगे कि जब श्री कृष्ण जाने लगे तब क्या हुआ। अभी भी अश्वत्थामा का क्रोध संतुष्ट नहीं हुआ है, अभी वो और भी कुछ करने वाले हैं, तो ये हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।